आशाओं के दीप जला।
कार्यक्रम आशादीप में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके प्रतिदिन के जीवन से जुड़ी बातों और जीवन की आवश्यकताओं पर बाइबल आधारित संदेश प्रस्तुत करते हैं। इससे पहले कि आप संदेश सुने, आइए कार्यक्रम के आरंभ में यह गीत सुनते हैं।
नया गीत मुझे देना यीशु, नया गीत मुझे देना यीशु। मैं तुझ में डूबा रहना चाहता हूँ, नया गीत मुझे देना यीशु। दाऊद की तरह काश मैं भी बनूं, गीत नया गाकर तुझको सिजदा करूं। दाऊद की तरह काश मैं भी बनूं, गाकर तुझको सिजदा करूं। मैं तेरे ही नाम को ऊंचा करूं, तुझको सिजदा हमेशा करूं। हाँ, नया गीत मुझे देना यीशु, नया गीत मुझे देना यीशु। मैं तुझ में डूबा रहना चाहता हूँ, नया गीत मुझे देना यीशु। अगर ना रहे कैसे फिर मैं जीऊं, मीत अगर ना रहे जिंदगी में मेरी, गीत अगर ना रहे कैसे फिर मैं जीऊं। मीत अगर ना रहे, मैं तेरे ही गीत को मीत बना कर जिंदा हमेशा रहूं। हाँ, नया गीत मुझे देना यीशु, नया गीत मुझे देना यीशु। मैं तुझ में डूबा रहना चाहता हूँ, नया गीत मुझे देना यीशु।
प्रिय श्रोता,
पिछले संदेश में हमने अपने जीव के बारे में देखा, जिसे एक दैत्य का नाम दिया गया है। इसका कारण भी हमने देखा था। आज भी जीव की भयंकरता से जुड़े कुछ और बातों को हम देखने जा रहे हैं, जिन्हें समझने के लिए हम परमेश्वर के वचन की सहायता लेंगे, जहाँ कुछ इस प्रकार लिखा है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते और इसी से मनुष्यों को, जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। याकूब 3:7-10। दरअसल में याकूब यहाँ पर मनुष्य के जीव से संबंधित कुछ व्यावहारिक सत्यों पर गौर करते हुए इस बात पर जोर डालना चाहता है कि प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग अपने इसी जीव से उनकी स्तुति करते हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं तथा उन्हें आदर देते हैं और गीत गाते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मुझे तेरी स्तुति करने के लिए हजारों जीव दे, ताकि मैं अपने उद्धारकर्ता की स्तुति कर सकूं। मेरे परमेश्वर और मेरे राजा की, जो मुझे जय देता है, मैं स्तुति करता हूँ। फिर कोई दूसरी जीव इस प्रकार कहती है, काश मैं आपकी अवर्णनीय तारीफ कर पाता। हे इसराइल के परमेश्वर, आपकी महिमा हो। तार वाले वाजों के साथ जिब्राइल की नाई मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार की प्रार्थना हम किया करते हैं, या फिर कलीसियाओं में खड़े होकर गवाहियाँ देते हैं कि परमेश्वर ने लौ लगाकर की गई मेरी प्रार्थना को सुन लिया, और दूसरों को भी उत्साहित करते हैं कि वे भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, हमारी रक्षा, हमारी ज़रूरतों के लिए तथा अन्य अन्य बातों के लिए वे दुआ करें। प्रिय श्रोता, ये सभी बातें अच्छी हैं और विश्वासी होने के नाते हमें ऐसा करना भी चाहिए, और हम ऐसा किया भी करते हैं। याकूब इन सब बातों को बड़े ध्यान से देख रहा है कि यही जीव किस तरह से अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद देती है, मनुष्यों के श्राप को आशीष में बदलने के लिए प्रार्थना करती है, एक दूसरे के लिए मिन्नतें करती है, पर इसमें सांपों का सा जहर भरा है, जो बड़ा ही खतरनाक है। यह सारी देह पर कलंक लगा देती है और जीवन गति में आग लगा देती है, नरक कुंड की आग से जलती रहती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपनी जीव को नियंत्रण में रखने की कोशिश करें। असल में यह जीव हमारे रक्त संचालन में एक प्रकार का बुरा संकेत उत्पन्न कर देती है। जीव तथा हमारी बोली के बारे में सर आदम क्लार्क अपनी पुस्तक में कुछ इस प्रकार लिखते हैं। इस बात को लिखते समय हो सकता है कि याकूब रक्त संचालन की बात पर ध्यान न दिया हो, लेकिन क्रोध तथा जलजलाहट पैदा करने वाले वचन का प्रभाव बड़े अद्भुत रीति से हमारे रक्त संचालन और हमारी हृदय गति पर पड़ता है, जो इसे तेज कर देता है। रक्त नलियों में, नसों में और फिर हृदय से वापस उसी ओर रक्त दौड़ने के कारण शरीर में गर्मी पैदा होने लगती है और आँखों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, मानो जीवन की गति में आग लगने लगती है, और शायद हम इन प्रभावों को महसूस नहीं करते होंगे। फिर आगे वह कहता है कि यह नरक कुंड की आग से जलती रहती है। शायद वह यहाँ पर गहना की बात कर रहा है, जो हिन्नोम की घाटी थी, और यरूशलेम नगर के बाहर थी। यहीं पर कूड़ों को जलाने के लिए डाला जाता था। पवित्र शास्त्र बाइबल में सांकेतिक रूप से इसे एक ऐसे जगह के रूप में समझा जाता था जो मानो अनंत दंड का स्थान हो। परमेश्वर की दृष्टि में जीव का यही स्थान है। क्या आप इस बात पर गौर कर रहे हैं? सो हम इस जीव का सही उपयोग करें। परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करें कि वे हमारे मुंह पर अपना पहरा बैठाए, हमारे हृदय के बुरे विचारों को दूर करें, ताकि हर एक बुराई हमसे दूर रहे और हम अपने मुंह की चौकसी करने पाएं। याकूब आगे कहता है कि इसी जीभ से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? शायद ऐसा नहीं होता। दरअसल में याकूब यहाँ पर कुछ नई बात कहता है, क्योंकि इसके पहले वह किसी के तिरस्कार किए जाने की बात कर रहा था, पर अब वह कोई और ही बात करता है, यानी वह सर्वसाधारण मनुष्यों की बात करता है जो परमेश्वर के स्वरूप में ही रचे गए हैं। प्रिय मित्र, ये बात सच है कि पूरी मनुष्य जाति की रचना परमेश्वर के स्वरूप में की गई है। इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए और सबके प्रति अच्छा विचार रखना चाहिए। किसी की बुराई न करें, न किसी को श्राप दें, पर एक दूसरे के लिए अच्छी सोच रखें। काश परमेश्वर आपको एक अच्छी जीभ प्रदान करे जो आपके वश में हमेशा बनी रहे।
श्रोताओं, आशादीप कार्यक्रम में हम आपकी परेशानियों एवं समस्याओं का बाइबल आधारित समाधान प्रस्तुत करते हैं। यदि आपकी कोई समस्या है तो हमें अवश्य लिखिए। हम आपके मन की शांति और आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए आप संस्था द्वारा चलाए जा रहे निशुल्क डाक बाइबल अध्ययन में अपना नामांकन भी करा सकते हैं। तो मित्रों, पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है आशादीप, पोस्ट बॉक्स नंबर 205, रांची 834001, झारखंड। पता एक बार फिर, आशादीप, पोस्ट बॉक्स नंबर 205, रांची 834001, झारखंड। विशेष जानकारी के लिए आप फोन द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 09835983759। पुनः एक बार 09835983759। श्रोताओं, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। हमारी मुलाकात अगले कार्यक्रम में इसी समय इसी मीटर बैंड पर फिर होगी। तब तक के लिए एलिस को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।